एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडिया सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज की इस चर्चा में सभी श्रोताओं का स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलटने जा रहे हैं जो हमें विश्वास, नैतिकता और हाँ, हमारे अपने अस्तित्व के बेहद गहरे और शायद कुछ कुछ असहज करने वाले सवालों से रूबरू कराती है।
ये वो सवाल हैं जो हम शायद कभी न कभी खुद से, खासकर मुश्किल वक्त में, जरूर पूछते हैं, है ना?
बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के डेनिश दार्शनिक सोरेन कीर्केगार्ड की। उनकी एक बहुत ही चर्चित और उतनी ही कह सकते हैं जटिल किताब फियर एंड ट्रेम्बलिंग की,
जिसका हिंदी में अनुवाद भय और कंपन किया जा सकता है शायद।
हाँ, कुछ वैसा ही। ये सिर्फ कोई फिलॉसफी की सूखी किताब नहीं है, बल्कि आस्था की प्रकृति और इंसान के अंदर जो कश्मकश चलती है ना, उसकी एक बहुत गहरी पड़ताल है।
और इसका जरिया बनती है बाइबल की एक कहानी, जानी पहचानी है पर शायद उतनी ही परेशान करने वाली, अब्राहम और उनके बेटे इसाक की कहानी।
हाँ, वो कहानी जहाँ ईश्वर अब्राहम को हुक्म देते हैं कि अपने इकलौते प्यारे बेटे की बलि दे दो।
सोचकर ये अजीब लगता है। तो कीर्केगार्ड इसी कहानी को पकड़कर पूछते हैं, भाई ये सच्चा विश्वास आखिर है क्या चीज? क्या ये हमारे रोजमर्रा के तर्क, हमारी समझ और समाज के बनाए नैतिक नियमों से भी परे है?
और आज के समय में ये सवाल और भी ज्यादा मायने रखते हैं ना। हम अक्सर देखते हैं कि लोगों के अपने निजी विश्वास और समाज की जो उम्मीदें हैं या नैतिक पैमाने हैं, उनमें टकराव होता है।
बिल्कुल।
तब क्या करें, अपने दिल की सुने या दुनिया की?
सही कहा। कीर्केगार्ड के विचार ना इस दुविधा को समझने का एक बहुत ही अनोखा नजरिया देते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इस थोड़ी उलझी हुई लेकिन बेहद दिलचस्प किताब की परतें खोलने की। हाँ बिल्कुल। पर बातचीत शुरू करने से पहले थोड़ा लेखक के बारे में जानना जरूरी है, मुझे लगता है। सोरेन कीर्केगार्ड, जैसा आपने बताया, डेनमार्क के थे। कोपेनहेगन में जन्मे 1813 में। और उन्हें अक्सर अस्तित्ववाद का पितामह कहा जाता है, मतलब वो धारा जो इंसान के व्यक्तिगत अनुभव, उसके चुनाव और उसकी आजादी पर जोर देती है।
हाँ, और उनके विचारों को समझने के लिए ना, उनके जीवन की कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। उन पर अपने पिता का, जो काफी उदास और गहरे धार्मिक इंसान थे, बहुत असर था।
अच्छा।
और वो खुद भी अपनी पूरी जिंदगी एक तरह के अवसाद, चिंता और गहरे धार्मिक सवालों से जूझते रहे।
ओह।
एक और दिलचस्प बात है, उनकी एक महिला थी रजीना ऑल्सन, जिनसे उनकी सगाई हुई थी, लेकिन उन्होंने वो सगाई खुद ही तोड़ दी।
अरे क्यों?
वजह तो जटिल हैं, पर उस टूटे रिश्ते की टीस, वो दर्द उनके लिखने में बार बार झलकता है। यही निजी संघर्ष हैं जो उनके दर्शन को सिर्फ किताबी नहीं बनाते, बल्कि जिंदगी के बेहद करीब ले आते हैं। वो हवा में बातें नहीं कर रहे थे।
ये बात तो है। और एक और खास बात उनके लिखने के तरीके की है, उन्होंने अपनी कई किताबें असली नाम से नहीं लिखी हैं।
हाँ, छद्म नामों से, मतलब नकली नामों से। फेयर एंड ट्रेम्बलिंग भी उन्होंने योहानिस डी साइलेंशियो के नाम से लिखी थी।
योहानिस डी साइलेंशियो, इसका मतलब?
इसका मतलब है मौन रहने वाला योहानिस, योहानिस डी साइलेंटियो।
वाह, मौन रहने वाला योहानिस।
हाँ, और ये सिर्फ कोई स्टाइल की बात नहीं थी। ऐसा करके वो अलग अलग नजरियों से किसी विषय को टटोल पाती थी, बिना सीधे सीधे ये कहे कि मैं ये मानती हूँ।
अच्छा, तो एक तरह की आजादी मिल जाती थी।
बिल्कुल, विचारों को खुलकर बिना किसी बंधन के एक्सप्लोर करने की आजादी। तो उनका अपना तजुर्बा, उनकी गहरी सोच और ये लिखने का अंदाज, ये सब मिलकर फेयर एंड ट्रेम्बलिंग को एक बेहद निजी और प्रामाणिक दस्तावेज बनाते हैं।
सही कहा। तो अब आते सीधे किताब पर। फेयर एंड ट्रेम्बलिंग, जैसा हमने कहा, विश्वास की प्रकृति पर एक गहरा और सच कहूं तो थोड़ा झकझोर देने वाला चिंतन है।
बिल्कुल।
ये अब्राहम और इसाक की कहानी को आधार बनाती है। एक पिता को ईश्वर का हुक्म मिलता है कि वो अपने बेटे की बलि चढ़ाए। अब सोचिए, ये एक ऐसा हुक्म है जो किसी भी सामान्य इंसानी या नैतिक नजरिए से देखें तो भयानक है, बेतुका लगता है।
बिल्कुल बेतुका। और यहीं से कीर्केगार्ड का मुख्य तर्क उभरता है। वो कहते हैं कि सच्चा धार्मिक विश्वास जो है ना, वो हमारी रोजमर्रा की समझदारी, हमारे तर्क और समाज के बनाए नैतिक नियमों के दायरे से बाहर होता है।
बाहर होता है मतलब?
एक ऐसी छलांग जो हमें जाने पहचाने नैतिक उसूलों से परे ले जाती है, ईश्वर के साथ एक सीधे, एकदम निजी रिश्ते में।
अच्छा, तो ये रिश्ता तर्क या समाज के हिसाब से नहीं चलता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं कीर्केगार्ड अपने समय के एक और बड़े दार्शनिक थे, हेगल, उनके विचारों को सीधी चुनौती दे रहे थे। हेगल मानते थे कि भय धर्म और तर्क में तालमेल हो सकता है, आस्था को भी तार्किक रूप से समझा जा सकता है।
हाँ, ये तो आम धारणा भी है।
हाँ, लेकिन किर्केगार्ड कहते नहीं, ऐसा नहीं है। सच्चा विश्वास तो विरोधाभास मतलब पैराडॉक्स और अनिश्चितता के बीच ही पनपता है। वो ये सवाल उठाते हैं कि कोई इंसान समाज के नैतिक नियमों में बंधा भी रहे और साखी ईश्वर के सामने पूरी ईमानदारी पूरी सच्चाई से कैसे जी सकता है। ये एक बड़ा सवाल है।
बड़ा सवाल है।
और यहीं पर वो एब्जर्ड एब्जर्ड का विचार लाते हैं।
एब्जर्ड मतलब
बेतुका। हाँ, अतर्क या बेतुका। किर्केगार्ड कहते हैं कि विश्वास का मतलब ही है इस एब्सर्ड को गले लगाना, इस संभावना को स्वीकार करना कि ईश्वर का आदेश हमारी मानवीय नैतिकता और तर्क की समझ से एकदम उलट, एकदम बेतुका हो सकता है।
बाप रे, ये तो काफी मुश्किल बात है।
है तो, इसीलिए ये किताब उन लोगों के लिए है जो आस्था की एक आसान आरामदायक समझ से आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उसकी मुश्किल परेशान करने वाली यहाँ तक कि बेतुकी लगने वाली संभावनाओं का सामना करने को तैयार हैं। ये हमें आसान विश्वास पर सवाल उठाने को मजबूर करती है।
चलिए, अब किताब के कुछ खास हिस्सों पर थोड़ा और गौर करते हैं। शुरुआत होती है प्रीफेस यानी प्रस्तावना से।
हाँ,
यहाँ वो छद्म नाम वाले लेखक योहानस बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखते हैं। वो कहते हैं कि देखो, मैं अब्राहम के विश्वास के स्तर को समझ नहीं सकता, उसे पकड़ नहीं सकता, लेकिन मैं उसकी दिल से तारीफ करता हूँ। वो खुद को बस एक प्रशंसक की तरह देखते हैं।
हाँ, जिसने वैसे में विश्वास करने का साहस नहीं है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये पूरी किताब के लिए एक ईमानदार खोज का माहौल बना देती है, किसी उपदेशक का भाषण नहीं लगता।
सही कहा। इसके बाद आता है एक्सॉर्डियम। इसे भूमिका या सुर मिलाना कह सकते हैं। ये हिस्सा बड़ा काव्यात्मक है।
अच्छा।
हाँ, इसमें योहानेस अब्राहम और इसाक की कहानी के चार अलग अलग काल्पनिक रूप पेश करते हैं। हर रूप में अब्राहम पहाड़ पर तो जाता है, लेकिन उसके मन की हालत, उसकी सोच बिल्कुल अलग है।
जैसे?
जैसे एक में वो खुद को बुरा साबित करने की कोशिश करता है ताकि इसाक का ईश्वर में विश्वास बना रहे। दूसरे में वो आज्ञा तो मानता है पर अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा में है और ईश्वर के न्याय पर सवाल उठा रहा है। तीसरे में वो इसे अपने पापों की सजा मान लेता है और निराशा में बलि दे ही नहीं पाता। चौथे में वो अनुभव उसे इतना तोड़ देता है कि वो फिर कभी खुशी महसूस नहीं कर पाता।
अरे बाप रे, ये तो बड़े दुखद अंत है।
हाँ, लेकिन योहानेस कहते हैं कि असली अब्राहम ने इनमें से कुछ नहीं किया।
तो फिर असली अब्राहम ने क्या किया? ये सवाल फिर आ गया।
योहानेस के मुताबिक असली अब्राहम ने न कोई बहाना बनाया, न तर्क दिया, न निराशा में डूबा। उसने बस एब्जर्ड के आधार पर यानी उस बेतुके हुक्म को स्वीकार करते हुए पूरे विश्वास के साथ काम किया।
सिर्फ विश्वास के दम पर?
हाँ। इन काल्पनिक कहानियों का मकसद यही दिखाना है कि हम कितनी आसानी से अब्राहम की कहानी को अपनी रोजमर्रा की भावनाओं या नैतिक दुविधाओं में फिट करने की कोशिश करते हैं, जबकि किर्केगार्ड के लिए उसका विश्वास इन सबसे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और तर्क से परे था।
समझ रहा हूं। फिर आता है यूलोजी ऑन अब्राहम यानी अब्राहम की स्तुति।
हाँ, यहाँ योहानेस अब्राहम की तारीफ तो करते हैं लेकिन उसकी नैतिकता या हिम्मत के लिए नहीं।
तो फिर किस लिए?
इसलिए कि उसे समझा नहीं जा सकता, उसकी इनकॉम्प्रिहेंसिबिलिटी के लिए। वो कहते हैं कि हम यूनानी नायक एगमेमनन के लिए आंसू बहा सकते हैं क्योंकि उसका मकसद मतलब राष्ट्र को बचाना हमें समझ आता है।
हाँ, उसका तर्क समझ आता है।
पर अब्राहम के लिए कोई नहीं रो सकता क्योंकि उसका काम, उसकी परीक्षा पूरी तरह निजी थी, ईश्वर और उसके बीच। उसे हमारी समझ के दायरे से बाहर रखा गया है। और यहीं पर योहानेस उसे विश्वास का शूरवीर, नाइट ऑफ फेथ कहते हैं, ना कि कोई नैतिक हीरो या दुखद नायक।
विश्वास का शूरवीर, नाइट ऑफ फेथ, ये बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है।
बिल्कुल। और अब हम किताब के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से पर आते हैं, प्रॉब्लमाटा यानी समस्याएं। यहाँ योहानेस तीन बड़े सवाल उठाते हैं जो अब्राहम की कहानी से सीधे पैदा होते हैं।
पहला सवाल क्या है? थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
हाँ, पहला सवाल है, क्या नैतिकता का प्रयोजन मूलक निलंबन संभव है?
बापरे, ये क्या है, प्रयोजन मूलक निलंबन?
हाँ, सुनने में भारी है पर मतलब सीधा है। क्या कोई ऐसा ऊंचा मकसद या लक्ष्य हो सकता है? टेलियोलॉजिकल का मतलब होता है लक्ष्य संबंधी।
अच्छा, लक्ष्य संबंधी।
हाँ, तो क्या कोई ऐसा ऊंचा लक्ष्य हो सकता है जिसके लिए समाज के माने हुए नैतिक नियम, जैसे अपने बच्चे की रक्षा करना, हत्या ना करना, इनको ताक पर रखना पड़े, उन्हें सस्पेंड करना पड़े, निलंबित करना पड़े?
ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो कीर्केगार्ड का जवाब क्या है, हाँ या ना?
उनका जवाब है हाँ, मुमकिन है।
हाँ
हाँ, अब्राहम की कहानी ही इसका सबूत है। ईश्वर के प्रति उसका जो सीधा परम कर्तव्य था, वो उसकी नैतिक जिम्मेदारी से, मतलब एक पिता होने की जिम्मेदारी से ऊपर हो गया।
लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी अपने हिसाब से नैतिक नियम तोड़ दे?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। कीर्केगार्ड ये नहीं कह रहे कि किसी भी मकसद के लिए नैतिक नियमों को तोड़ने की खुली छूट है। ये सिर्फ ईश्वर के सीधे व्यक्तिगत आदेश के संदर्भ में ही संभव है, जो कि एक असाधारण स्थिति है। लेकिन ये विचार ही अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है ना?
हाँ, ये तो है। ये कहता है कि आस्था का दायरा हमारे बनाए नैतिक नियमों से भी ऊपर जा सकता है।
बिल्कुल। तो दूसरा सवाल इसी से जोड़ता है, समस्या दो, क्या ईश्वर के प्रति कोई परम कर्तव्य है?
यानी क्या ईश्वर के लिए हमारी कोई ऐसी जिम्मेदारी हो सकती है जो बाकी सारी जिम्मेदारियों से, परिवार, समाज, नैतिक सिद्धांत सबसे ऊपर हो?
कीर्केगार्ड कहते हैं हाँ, और ये कर्तव्य परम या निरपेक्ष इसलिए है क्योंकि इसे दुनियावी तर्क या सामाजिक नियमों के तराजू पर तोला नहीं जा सकता, इसे सही या गलत साबित नहीं किया जा सकता।
अच्छा,
ये ईश्वर और व्यक्ति के बीच का सीधा मामला है जिसे कोई बाहर वाला पूरी तरह नहीं समझ सकता, और इसीलिए विश्वास एक बेहद निजी, एकदम व्यक्ति परक अनुभव बन जाता है, हर किसी का अपना।
निजी और व्यक्ति परक।
और तीसरा सवाल,
समस्या तीन, क्या अब्राहम का चुप रहना नैतिक रूप से सही था? उसने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपनी पत्नी सारा को, ना बेटे इसाक को, जबकि हम सोचते हैं कि नैतिक नायक को तो पारदर्शी होना चाहिए, बताना चाहिए।
सही बात है, लेकिन कीर्केगार्ड के लिए हाँ, उसका मौन जरूरी था।
जरूरी था क्यों?
क्योंकि जिस काम के लिए उसे बुलाया गया था, उसे नैतिक भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में समझाया ही नहीं जा सकता था। अगर वो किसी को बताता तो लोग उसे क्या समझते, पागल समझते या कोई अपराधी?
हाँ, ये बात भी सही है।
विश्वास का शूरवीर अपनी यात्रा में अकेला होता है, उसका अनुभव शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, वो किसी को समझा नहीं सकता, ये विश्वास की गहरी तन्हाई को दिखाता है।
बाप रे, ये तो काफी गंभीर बातें। इन हिस्सों से कुछ खास विषय और संदेश उभर कर आते हैं लगता है।
हाँ, कई हैं। सबसे पहला तो यही विश्वास का विरोधाभास, पैराडॉक्स ऑफ फेथ, और दी एब्सर्ड
का।
हाँ, ये एब्सर्ड वाला कॉन्सेप्ट
कि सच्चा विश्वास तर्क की पहुंच से बाहर है, ये उस चीज में यकीन करना है जो बेतुकी लगे, जिसके पक्ष में कोई सबूत ना हो सिवाय ईश्वर पर भरोसे के।
अगर हम सोचें तो रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कई बार ऐसी उम्मीदें रखते हैं जो शायद पूरी तरह तार्किक ना हो, पर वो हमें हिम्मत देती हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल। दूसरा अहम विषय आपने बताया था, व्यक्ति बनाम सार्वभौमिक, यानी इंडिविजुअल वर्सेस यूनिवर्सल।
हाँ, समाज और नैतिकता के नियम हमसे कहते हैं कि हम सबके लिए बने उसूलों का पालन करें, सार्वभौमिक।
लेकिन कीर्केगार्ड दिखाते हैं कि सच्चा विश्वास व्यक्ति को ईश्वर के सामने बिल्कुल अकेला खड़ा कर देता है, कभी कभी समाज के नियमों के खिलाफ भी।
और जैसा आपने कहा, भारत जैसे देश में ये कश्मकश अक्सर दिखती है, जहाँ किसी व्यक्ति की अंतरात्मा या निजी पसंद परिवार या समाज की उम्मीदों से टकरा सकती है।
बिल्कुल। तीसरा, विश्वास का शूरवीर बनाम दुखद नायक, नाइट ऑफ फेथ वर्सेस ट्रेजिक हीरो।
हाँ,
ये बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है।
हाँ, इसे थोड़ा और समझाएंगी।
देखिए, दुखद नायक जैसे यूनानी कहानियों में एग्मेमनोन, वो भी त्याग करता है, बेटी की बलि देता है, लेकिन उसका मकसद समझा जा सकता है, राष्ट्र के लिए, समाज उसके लिए सहानुभूति रख सकता है, उसके दुख को समझ सकता है।
लेकिन विश्वास का शूरवीर जैसे अब्राहम, उसका त्याग समझ से परे है, वो किसी दुनियावी भलाई के लिए नहीं बल्कि ईश्वर से अपने निजी रिश्ते के लिए काम कर रहा है, वो अकेला है, चुप है और उसे समझा नहीं जा सकता। ये हमें अलग अलग तरह के बलिदानों और उनकी प्रेरणाओं को बेहतर समझने में मदद करता है।
समझ गया। और चौथा आपने बताया था, अनंत त्याग और विश्वास की छलांग, ये दोहरी चाल क्या है?
हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कीर्केगार्ड कहते हैं कि विश्वास तक पहुंचने के दो कदम हैं। पहला है अनंत त्याग, इन्फिनाइट रेजिग्नेशन, मतलब दुनिया में अपनी सबसे प्यारी चीज को पूरी तरह छोड़ देने की तैयारी और उस दर्द में भी एक तरह की शांति पा लेना।
अब्राहम के लिए ये था इसाक को खोने की हकीकत को पूरी तरह कबूल कर लेना।
बिल्कुल, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। असली चीज है दूसरा कदम, विश्वास की छलांग, लीप ऑफ फेथ। सब कुछ छोड़ देने के बाद ये मानना कि एब्सर्ड के आधार पर, यानी तर्क के खिलाफ जाकर भी वो सब कुछ वापस मिल जाएगा।
मतलब अब्राहम ने इसाक को त्याग दिया,
हाँ,
पर ये विश्वास भी रखा कि वो उसे वापस पाएगा,
हाँ,
भले ये नामुमकिन लगे।
हाँ, यही है विश्वास की छलांग। ये सिर्फ त्याग नहीं है, ये त्याग के बाद तर्क से परे जाकर आशा करना है। ये नुकसान से उभरने और उम्मीद खोजने की एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है अगर देखें तो।
और पांचवा विषय था मौन और संवादहीनता, साइलेंस एंड इनकम्युनिकेबिलिटी।
हाँ, ये दिखाता है कि कुछ गहरे अनुभव या विश्वास ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बांधना नामुमकिन होता है। विश्वास किशोरवीर का ईश्वर से रिश्ता इतना निजी होता है कि वो उसे किसी और को समझा नहीं सकता। हम सबने शायद कभी ना कभी महसूस किया होगा ना कि अपने किसी बहुत गहरे एहसास को बयां करना कितना मुश्किल है।
हाँ, बिल्कुल महसूस किया है, शब्द कम पड़ जाते हैं।
वही बात, और इस किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो इन मुश्किल विचारों को पकड़ती हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, कुछ यादगार कथन साझा कर सकते हैं?
जरूर। जैसे एक है, विश्वास ठीक यही विरोधाभास है कि व्यक्ति सार्वभौमिक से ऊपर है। ये सीधे तौर पर बताता है कि कैसे ईश्वर से निजी रिश्ता सामाजिक नियमों से ऊपर जा सकता है।
और एक आपने पहले भी कहा था, विश्वास वहीं से शुरू होता है जहां सोच खत्म होती है।
हाँ, ये साफ करता है कि विश्वास सिर्फ दिमाग का खेल नहीं बल्कि तर्क की सीमाओं से आगे एक कदम है, एक छलांग है।
अब्राहम के बारे में ये कहना भी बहुत बहुत शक्तिशाली है। अब्राहम ने एब्सर्ड, अतर्क्य बेतुके के आधार पर विश्वास किया।
बिल्कुल, उसका विश्वास सबूतों पर नहीं बल्कि उस बेतुके में, उस अतर्क्य में भरोसे पर टिका था।
और किताब का शीर्षक ही व्यक्ति को ईश्वर के सामने अकेले, भय और कंपन में खड़ा होना पड़ता है। ये दिखाता है कि सच्ची आस्था कोई आसान या आरामदायक चीज नहीं बल्कि एक विस्मयकारी, शायद डरा देने वाली जिम्मेदारी और गहरा अकेलापन है। ये सब सुनने में बहुत गहरा और दार्शनिक लगता है, लेकिन क्या इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी कोई लेना देना है, या ये सिर्फ किताबों की लाते हैं?
नहीं नहीं, बिल्कुल लेना देना है। सोचिए व्यक्तिगत निर्णय लेने के बारे में, कितनी बार ऐसा होता है कि हमें ऐसे रास्ते चुनने पड़ते हैं जो शायद दुनिया की नज़र में सही ना हो या जिनके पक्ष में कोई ठोस तर्क ना हो, पर अंदर से एक आवाज़ आती है कि यही सही है।
हाँ, होता है, जैसे कोई लीक से हटकर करियर चुनना।
हाँ, या कोई ऐसा रिश्ता निभाना जिसे समाज शायद मंजूरी ना दे। किर्केगार्ड हमें उस अकेलेपन और अनिश्चितता को समझने में मदद करते हैं। वो दिखाते हैं कि यह अकेलापन शायद जरूरी भी है।
और पेशेवर जीवन में सत्यनिष्ठा, इसका क्या उदाहरण हो सकता है?
मान लीजिए कोई विसल ब्लोअर है जो किसी कंपनी या संस्था में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उसे अकेला खड़ा होना पड़ता है ना?
हाँ बिल्कुल, नौकरी जाने का खतरा, समाज का दबाव।
सही, तो वो भी एक तरह से विश्वास के शूरवीर की तरह ही है जो नैतिक उसूलों के लिए अकेला खड़ा है भले ही उसे कोई समझे या ना समझे।
ये अच्छा उदाहरण है। और आध्यात्मिकता के लिहाज से?
आध्यात्मिकता के लिहाज से ये किताब एक तरह की चुनौती है। ये हमें सिर्फ रस्मों रिवाजों वाले आरामदायक धर्म पर सवाल उठाने को कहती है। किर्केगार्ड के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता में जोखिम है, अनिश्चितता है और निजी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ बनी बनाई लीक पर चलना नहीं है।
और हाँ, अनिश्चितता को स्वीकारना जिंदगी के कई बड़े फैसलों में, चाहे वो शादी हो, नया काम शुरू करना हो या कोई बड़ा बदलाव लाना हो, हमें पूरी जानकारी कभी नहीं होती।
कभी नहीं होती।
तर्क एक हद तक जवाब नहीं दे पाता, तो वहां एक तरह की विश्वास की छलांग लगानी पड़ती है ना, पूरी तरह जाने बिना भी जुनून और भरोसे के साथ आगे बढ़ना।
बिल्कुल, किर्केगार्ड यही कहते हैं कि प्रतिबद्धता का मतलब ये नहीं कि हमें सारे जवाब पता हों, बल्कि ये है कि हम अज्ञात के बीच भी जुनून और दृढ़ विश्वास के साथ काम करें।
और ये बात शायद मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ती है, आपने चिंता की बात की थी।
हाँ बिल्कुल, किर्केगार्ड दिखाते हैं कि ये जो अस्तित्वगत चिंता या बेचैनी होती है ना, ये हमेशा कोई बीमारी नहीं होती। ये जिंदगी के बड़े सवालों से जूझने का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकती है। ये डर, ये कंपन हमें एक ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा सच्चे जीवन जीने की तरफ धकेल सकता है।
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे लिए जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो ये है कि किर्केगार्ड विश्वास को तर्क और नैतिकता के सुरक्षित दायरे से बाहर खींचकर उसे कितना व्यक्तिगत, कितना अकेला और सच कहूं तो कितना भयावह अनुभव बना देते हैं।
ये विश्वास के बारे में हमारी जो सुखद, आसान कल्पनाएं होती हैं उन्हें तोड़ता है। ये कोई आसान रास्ता नहीं दिखाते। सही कहा, और मेरे लिए सबसे अहम सीख यह है कि एक सच्चा प्रामाणिक जीवन, चाहे वो धार्मिक हो या न हो, उसमें हमेशा विरोधाभास शामिल है, अनिश्चितता शामिल है और गलत होने का खतरा भी बना रहता है। फिर भी हमें चुनाव करने पड़ते हैं, हमें प्रतिबद्ध होना पड़ता है। ये किताब दिखाती है कि शायद जीवन के सबसे गहरे मायने वही छुपे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं सकते, जो हमारी तर्क की पकड़ से बाहर है। शायद इसी एब्सर्ड को, इसी बेतुकेपन को गले लगाने में ही कोई गहरी सच्चाई छुपी है।
बिल्कुल, ये किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब सिर्फ तर्क या सामाजिक नियमों में मिल सकते हैं, या फिर हमें उनसे परे देखने की, वो छलांग लगाने की हिम्मत करनी होगी जिसके बारे में किर्केगार्ड बात करते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकेत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।